لله كفى، الحمد لله كفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. पिछले 2 दिनों से हमारी ये मजलिस फिर से शुरू हुई है। ये आज इस सफर पे था और इन पिछले 2 दिनों में हमने तस्करा किया नबी अलैहिस्सलात वसलाम की वो मुबारक हदीस का, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन 7 लोगों को अर्श का साया मिलेगा जब कोई और साया नहीं होगा। ये 7 लोगों की इतनी तकरीम और इतनी इज्जत दी जाएगी कि सिर्फ ये नहीं कि कयामत के दिन अरबों खरबों लोग धूप में गर्मी में, हदीस पाक में आता है कि इतना पसीना होगा वो अपने पसीने में डूब रहे होंगे। तो इस सख्त गर्मी में ये 7 आमाल करने वाले, इनको न सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत साया देंगे, इनकी वो शान और इज्जत होगी कि अल्लाह अपने मुबारक अर्श का साया उन्हें अता करे। और पिछले 2 दिनों में हमने उनमें से जो सबसे पहले जिनका तस्करा हदीस में आया उसका तस्करा किया, और वो थे आदिल इमाम, वो बादशाह जिसने इंसाफ किया। आज की इस मजलिस में उस दूसरे शख्स का तस्करा करना मकसूद है जिसका तस्करा अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपनी इस मुबारक हदीस में फरमाया, और वो है नौजवान नौजवान इबादत गुजार, कि जिसने जवानी में इबादत खूब की। ये पक्की बात है कि हमारी इबादतों से उस बड़े मालिक की शान में कोई इजाफा नहीं होता, ना हमारी इबादत करने नहीं करने से उसकी बड़ी शान में कोई कमी नहीं आती। मगर ये बात भी तय है कि उस मालिक ने पसंद यही फरमाया कि हम उसकी इबादत करें। यानी इस हद तक आपने इस इबादत को पसंद फरमाया कि आपने अपने प्यारे महबूब से हुक्म फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदउना रब्बक, के महबूब आपने अपने आप को उनके साथ जोड़े रखे जो दिन और रात में हमारी हमें पुकारते हैं, हमारी इबादत करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने हमें इबादत करने का हुक्म दिया, अल्लाह ने ये पसंद फरमाया कि हमने साथ बैठना भी उन्हीं के है जो इबादत करने वाले हैं। और सच्ची बात यह है कि इबादत बहुत ही ताकतवर चीज है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि हम शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह ने इसकी ताकत के बारे में फरमाया, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, कामयाबी उसके लिए है जिसने अपने आप को सुथरा किया, जिसने अल्लाह को याद किया और नमाज अदा की। जो इबादत करेगा वो हर महाज पर कामयाब। इसलिए हमारे मशाइख ने फरमाया, ये जो मुसलमानों पे जोरदार किस्म का जुल्म हो रहा है कि नस्ल कशी इस वक्त की जा रही है फलस्तीन, और उनके साथ वो मजालिम उठाए जा रहे हैं जिसकी नजीर माजी करीब में शायद मिलती भी नहीं। मशायख ने फरमाया कि जहां इसके हल के लिए फौजी हल जरूरी है, इसके हल के लिए रुजू इलल्लाह भी जरूरी है। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दुद थानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक होता है काफिला गाजियों का, मुजाहिदीन का, और एक काफिला दुआ का होता है। और आपके फरमान के मुताबिक ये दुआ का काफिला जो है वो ज्यादा अफजल है। दुआ कई मरतबा अल्लाह ताला की मदद को बहुत जोरदार तरीके से खींचने वाली चीज, ये कामयाबी को पकड़ने वाली चीज है। इसलिए नारा तो लग जाता है कि जी दुआ करते हैं फलस्तीन के लिए, दुआ करते हैं उन मासूम बच्चों को जिनको बगैर किसी जुल्म के मारा जा रहा है, और उन औरतों को जिनको बेघर किया जा रहा है। मगर ये नारा नहीं, दिल से निकली भी दुआ हालात को बदल देती है। तो इसलिए ये इबादत एक बहुत ही ताकतवर चीज है, अगर हम इसको ताकत, इतनी ताकतवर तो है सही कि हदीस में आया जिसने नौजवानी में इबादत कर ली वो कयामत के दिन अल्लाह के बहुत बड़े मुकर्रमीन में, कयामत के दिन के इज्जतदार लोगों में होगा। तो इसलिए इबादत को इंसान ना छोड़े, इबादत पे कॉम्प्रोमाइज ना करे। हम कहते हैं यार ये भी काम है तो वो भी काम है, तो बच्चे को फलां जगह लेके जाना है तो फलां जगह ये है, ये भी जरूरी है भाई, कारोबार भी जरूरी, सब कर जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी इबादत है। हमें पैदा ही इबादत के लिए किया गया है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और किस काम के लिए हमें पैदा किया। तो जो मकसद जिंदगी का हम कहते हैं जी उसके लिए तो टाइम है कोई नहीं, बाकी बीवी बच्चों के लिए, काम कारोबार के लिए, दोस्तियां निभाने के लिए, रिश्तेदारियां निभाने के लिए, और नाउज़ बिल्ला कई मरतबा गुनाह और गफलत के काम करने के लिए खूब टाइम है। तो अच्छी बात यह है जब तक इबादत की आदत नहीं बनेगी, ये इबादत हमारे लिए लजीज भी नहीं बनेगी। इसलिए जबरदस्ती इसकी आदत बनानी जरूरी है। बीमार शख्स होता है ना, उसको भूख नहीं लगती, उसको यही कहा जाता है कि भाई तू जबरदस्ती खा तो कुछ वक्त बाद तुझे भूख लग जाएगी। इसी तरह जो रूहानी बीमार होता है उसको इबादत की भी समझ नहीं आती है, वो यही कहेगा जी मेरा ध्यान इधर उधर हो रहा है, उसको यही कहा जाएगा कुछ वक्त तू इबादत कर, तो एक वक्त आएगा कि तेरा ध्यान खूब लगने लगेगा। जिनको इबादत करने का शौक हो जाता है उनको इबादत से हटाना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी इंसान के दिल को मोह लेने वाली चीज है। इनको इबादत का शौक, उनको इबादत वाली रातें इस तरह मरहूब जैसे नई शादीशुदा नौजवान को रात को अपनी दुल्हन के पास जाना मरहूब। अगर हमें इन लज्जतों का क्या पता, हमें तो खाने पीने की लज्जत है, क्रिकेट मैच देखने की लज्जत है, کتابوں میں واقعہ لکھا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے بڑے بزرگ گزرے تھے، اور ہندوستان میں بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، مگر حضرت کا ان اولیاء کرام میں نمایاں نام اور نمایاں رنگ تھا. طول و عرض میں ہندوستان میں حضرت کے چاہنے والے، اور دین کا رنگ آپ نے سر پہ چڑھا دیا. حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ جو تھے وہ بھی حضرت کے بڑے منتقب اور بڑی محبت کرنے والے. اسی لیے دہلی میں آپ کے نام پہ آپ کی یادگار کے طور پہ قطب مینار بھی بنایا گیا. یہ پکی بات ہے، جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بلند کرتے ہیں. حضرت کا انتقال ہوا تو لاکھوں لوگ حضرت کے جنازے پہ جمع ہو گئے برکت حاصل کرنے کے لیے. ابھی جنازہ امام صاحب پڑھانے ہی والے تھے کہ ایک آدمی نے آواز لگائی کہ رک جائیں، حضرت کی جو نصیحت ہے وصیت ہے وہ جنازے سے پہلے پڑھنی ضروری ہے. امام صاحب نے کہا جی پڑھیں وصیت حضرت کی. حضرت کی وصیت پڑھی گئی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ چار بہت بڑی صفات ہوں گی، اور پہلی صفت یہ کہ جنازہ میرا وہ پڑھائے گا کہ جس نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی ہوگی. دوسری صفت یہ ہے کہ میرے جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی جماعت سے نماز قضا نہیں کی ہوگی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں کی. اور تیسری شرط اللہ نے فرمائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. زندگی. اور چوتھا فرمایا ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی عصر کی چار غیر موقعہ سنتیں قضا نہیں کی ہو. اب امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی جس کے اندر یہ چار صفات ہیں وہ آگے تشریف لے آئے، مگر ایسا عبادت گزار کہاں سے ملے؟ لاکھوں لوگوں میں خاموشی چھا گئی کہ جس نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، کبھی اس نے تکبیر اولیٰ قضا نہیں کی، کبھی چار سنت اثر کی قضا نہیں کی، کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا. اللہ. بہت دیر خاموشی کے بعد ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے بڑھ کے کہا کہ میں وہ گناہ گار ہوں جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں. لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ وقت کا بادشاہ سلطان التمش. تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ مصروفیت کے باوجود بھی خوب عبادت کر لیتا. عبادت کا تعلق ہماری مصروفیت کے ساتھ نہیں ہے، ہماری نیندوں کے ساتھ نہیں ہے، عبادت کا تعلق توفیق کے ساتھ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس نے جوانی میں عبادت کر لی اسے تو بہت بڑی توفیق نصیب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق کے لیے بھی قبول فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاکم اللہ. کل سے انشاءاللہ ٹائم جو ہے وہ 6:45 کی بجائے 6 پہ انشاءاللہ شروع کریں گے, اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کر دیا جائے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.